राघवेंद्र के दोस्तों ने उसके लिए 5-स्टार होटल में एक पार्टी का इंतजाम किया था। पार्टी में उसके मौसेरे भाई महेश ने कुछ लड़कियां बुलवाई थी। स्पेशल तोहफा बोलकर महेश ने राघवेंद्र को होटल के रूम नंबर 100 में भेजा था। राघवेंद्र उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो इस बात से अनजान था कि वो जिस कमरे में जा रहा था वहां वैद्य ही मौजूद थी। ये महेश भी ना, आई बेवजह इसकी तारीफ करती रहती है कि महेश कितना संस्कारी है। एक बार वो यहां आ जाए तो पता चल जाएगा कि उनकी बहन का बेटा कितना ज्यादा संस्कारी है। चलते हुए राघवेंद्र खुद से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद राघवेंद्र अंदर पहुंचा। आते ही उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने इधर उधर देखा तो कमरे को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वहां चारों तरफ कैंडल्स चल रही थी और एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इंतजाम तो बहुत अच्छे किए हैं, राघवेंद्र ने इधर उधर देखकर कहा और फिर लाइट जलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लाइट ऑन होते ही वो बेड की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बिस्तर पर एक लड़की सोई हुई थी जिसका मुंह ढका हुआ था। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती है मैडम आप, चलिए अब जल्दी से खड़ी हो जाइए, कहकर राघवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उठाने लगा। ये हिल क्यों नहीं रही? कितनी बार कहा है उसे कि लड़कियों को बेहोश करके इधर उधर मत लाया करें, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। लगता है इसे होश में लाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राघवेंद्र ने लड़की के चेहरे का दुपट्टा हटा दिया। वैदेही जी, राघवेंद्र ने आंखें बड़ी करके कहा। उसने देखा कि सामने बिस्तर पर वैदेही बेहोश पड़ी थी। ये इस हालत में यहां क्या कर रही है? कहीं कोई स्टिंग ऑपरेशन? घबराहट के मारे राघवेंद्र के माथे पर पसीने की बूंदे थी। उसने पास में पड़ा पानी पिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लल्लन कह रहा था कि वैदेही बीमार है। अगर ये बीमार है तो इस हालत में यहां क्या कर रही है, वो भी बेहोश? राघवेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो आगे की कहानी यही बता सकती है। राघवेंद्र उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था, लेकिन उसे अभी भी होश नहीं आया। वैदेही जी उठिए, राघवेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर हिलाया। अब ये क्या नई मुसीबत है? त्यागी जी को पता चला तो बवाल खड़ा कर देंगे। जब से ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है, कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है। मुझे महेश से ही सब कुछ पूछना होगा। राघवेंद्र वहां से जाने ही लगा था कि तभी उसे बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया और दौड़कर वैदेही के पास गया। वैदेही, उठो, वो गुस्से में चिल्लाया। मुझे नहीं पता ये लड़की बेहोश है या नहीं, लेकिन ये मेरा काम खराब करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। राघवेंद्र ने जल्दी से वैदेही को अपनी गोद में उठाया और वहां के पिछले दरवाजे से जाने लगा। वो होटल उसी के किसी जान पहचान के आदमी का था। वो उस होटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और पहले भी आ चुका था, इस वजह से उसे रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। राघवेंद्र वैदेही को लेकर दौड़ रहा था। वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और वैदेही को लेटकर अपनी गाड़ी भगा ली। वहां होटल में पुलिस की रेड में राघवेंद्र के कुछ आदमी, महेश और वहां आई लड़कियों को पकड़ा जा चुका था। राघवेंद्र अभी भी नहीं मिल रहा था, तो वहीं वैदेही भी गायब थी। वहां से निकलने के बाद राघवेंद्र तेज गति से सड़क पर अपनी गाड़ी बढ़ा रहा था। वो घबराया हुआ था और उसके पास वाली सीट पर वैदेही बेहोश लेटी हुई थी। उसने एक सुनसान सड़क पर जाकर गाड़ी रोकी। भगवान जाने ये किसका काम है, लेकिन अगर इसमें तुम्हारी थोड़ी भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो मुख्यमंत्री पद गया तेल लेने। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा वैदेही रघुवंशी, राघवेंद्र गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। वो वैदेही की तरफ देख रहा था, तभी वो हल्का सा खांसी। राघवेंद्र ने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और वैदेही के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। वैदेही को होश आ रहा था, उसने अपनी आंखें खोली। राघवेंद्र ने उसे पानी पकड़ाया। पानी के कुछ घूंट पीने के बाद वैदेही ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मैं यहां क्या कर रही हूं? बस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पिछले 3 घंटे से हम आपको सड़क पर लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। कर क्या रही थी आप उस होटल के कमरे में, राघवेंद्र ने गुस्से में कहा। उसके पूछने पर वैदेही को अपनी सोच में खो गई। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरी बार उसके साथ क्या हुआ था। पार्टी शुरू होने के कुछ देर पहले वो आदमी उन लड़कियों को लेकर वहां पर पहुंचा। राघवेंद्र और बाकी के मेहमान अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। लड़कियां कमरे में तैयार हो रही थी। सभी जल्दी जल्दी करो और कोई भी मेहमानों को निराश नहीं करेगी, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा। सभी ने उनकी बात पर हामी भरी। वो वहां से जाने लगा, तभी उसकी नजर कोने में एक कुर्सी पर बेहोश पड़ी वैदेही पर गई। भाव, आपने बताया नहीं कि इसका क्या करना है, एक लड़की ने पूछा। इसके भी कपड़े बदलकर अपनी तरह तैयार कर देना, और हां, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उस आदमी ने कहा और उन सबको वहीं पर छोड़कर चला गया। लड़कियां अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गई थी। कुछ देर बाद वो सभी तैयार हो गई। उन सबको देखने के लिए वो आदमी फिर वहां पर आया। मेहमान आने शुरू हो गए हैं, चलो सभी जल्दी जल्दी बाहर निकलो, उस आदमी ने तेज आवाज में कहा। सभी लड़कियां तैयार होकर बाहर जाने लगी, लेकिन वैदेही की अभी भी वहां कुर्सी पर बेहोश होने का दिखावा कर रही थी। वो आदमी उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही वैदेही उठी और उसने देव को कॉल किया। देव, जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करो, वो लोग यहां पहुंचते ही होंगे। वो आदमी किसी काम से वापस आया और उसने वैदेही को सामने की तरफ खड़े हुए पाया। उसके आने तक वैद्य ही अपना फोन छुपाने में कामयाब हो चुकी थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम लोग कौन हो? वैद्य ने रोनी शक्ल बनाकर अनजान बनने का दिखावा किया। उस आदमी ने तेजी से अपने जेब से रुमाल निकाली, उसके अंदर एक शीशी फंसी को बाहर निकालने के बाद वो फुर्ती से वैदेही की तरफ बढ़ा और उसे उसके मुंह के लगा दिया। इतनी तेजी तो रेलगाड़ी में भी नहीं होती होगी, नहीं होती जितनी ये काम करते करते मैंने पकड़ ली, उस आदमी ने खुद की तारीफ में कहा। वैदेही नीचे बेहोश पड़ी थी, उसने उसे उठाया और एक कमरे में जाकर लेटा दिया। आगे जो भी हुआ उसे कुछ याद नहीं था, वो राघवेंद्र के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। तुम बताओगी कि उस होटल के कमरे में क्या कर रही थी तुम? राघवेंद्र ने चिल्लाकर एक बार पूछा। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे वहां पर किसी ने कॉल करके बुलाया था। वो बाथरूम में खड़े होकर फोन पर बात कर रही थी कि पीछे से किसी ने आकर रुमाल से मेरा मुंह बंद कर दिया। बाद में मुझे आगे का कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही हूँ। वैदेही ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आपकी बातें सुनकर विश्वास करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस हालत में हमें मिली थी उस हिसाब से आप पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। वैदेही रघुवंशी जो गुंडों से लड़ती बिजी रहती है उसे एक मामूली से आदमी ने बेहोश करके धंधे पर लगा दिया, राघवेंद्र ने तंज कसा। राघवेंद्र की बात सुनकर वैदेही ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे परेशान देखकर राघवेंद्र ने भी बात को बदला और कहा, ये तो शुक्र मनाइए उस कमरे में हम थे, हमारी जगह कोई और होता तो अब तक आपके साथ क्या कुछ नहीं हो गया होता, या आप भी बाकियों की तरह पुलिस स्टेशन में होती। आपको पता भी है कि उस होटल में रेड पड़ी थी। वैदेही ने बिना कुछ बोले नामे सर हिला दिया। उसे चुप देखकर राघवेंद्र को झुंझलाहट होने लगी। अब आप आगे कुछ बोलेंगी भी या ऐसे ही बुत बनकर बैठी रहेगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर की आ रहे हैं, क्या प्लीज तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? वैदेही ने इतना ही कहा।
लो अब इनका ड्राइवर भी बनना पड़ेगा, ना जाने कह भी किस हक से रही है, जब से मिली है तब से लंका लगाने पर तुली है और आज हमसे ही रिक्वेस्ट कर रही है। बड़बड़ाते हुए राघवेंद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और वैदेही के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा ली। इसका मतलब होटल में रेड हो चुकी थी और राघवेंद्र जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकला। थैंक गॉड इसे मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना आज घर छोड़ने के बजाय ये मेरी जान ले रहा होता, वैदेही चुपचाप बैठी सोच रही थी। अच्छा वैदेही जी, हमें आपसे एक बात पूछनी थी, काफी देर छाई चुप्पी को तोड़ते हुए राघवेंद्र ने कहा। जी पूछिए। ये जो मुसीबतें हैं इनको आपका अलग से एड्रेस पता है या फिर आप जानबूझकर बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाती हैं? वैदेही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा आप आ रही हैं ना? वैदेही सवालिया नजरों से राघवेंद्र की तरफ देख रही थी। राघवेंद्र ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो उसके शपथ ग्रहण समारोह में तो आप आएंगी ही ना? राघवेंद्र वैदेही से बात करने की कोशिश कर रहा था। शायद आप अपनी शपथ को भूल रहे हैं राघवेंद्र जी, याद है आपने मेरे ऑफिस में बैठकर मुझे कहा था कि अगर आप मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मेरी जान लेंगे। लगता है नाश्ते में रोज बादाम और अखरोट खाती हैं तभी आपकी याददाश्त इतनी तेज है। वैसे सच कहें तो आपका मासूम चेहरा देखकर आपको मारने का दिल नहीं करेगा। मेरे चेहरे की मासूमियत से बाकी लोग इम्प्रेस होकर भले ही मुझे नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं राघवेंद्र जी, मैं बिल्कुल भी मासूम नहीं हूं। एंड वन मोर थिंग, अपने दुश्मनों से दिल नहीं लगाया जाता, वैदेही ने सख्त आवाज में जवाब दिया। दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे पर तंज कस रहे थे। कुछ देर बाद वैदेही का अपार्टमेंट आ गया। उसे बाय बोलने के बाद वो वहां से अपने फ्लैट की चली गई। राघवेंद्र उसको जाते हुए काफी देर तक देखता रहा। सच कहा अपने वैदेही जी, दुश्मनों से दिल नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आप हमारी दुश्मन नहीं होती तो पक्का आपसे ही दिल लगाते, राघवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा और अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली। यशवर्धन के बंगले पर यशवर्धन और अनंत देसाई दोनों एक साथ मौजूद थे। दोनों के चेहरे पर ही खुशी के भाव थे और वहां आसपास मौजूद शैंपेन की बोतल और बाकी चीजें देखकर लग रहा था कि वो दोनों अपनी ही पार्टी कर रहे थे। यशवर्धन ने पास मौजूद एक बड़ा सा लिफाफा उठाया और कहा, भाषण तैयार है ना देसाई जी? जी बिल्कुल सर, बस वैदेही जी की तरफ से फुटेज आ जाए तो काम थोड़ा और पुख्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल देसाई जी, वैदेही जी तो अपनी है, अब देर रात को उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता तो सोचा सुबह बात कर लेंगे, यशवर्धन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। असल मायने में हमारी जीत आज हुई है, राघवेंद्र को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके खिलाफ हमने ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठा कर रखे हैं कि मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उसे उम्र भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नहीं देसाई जी, हमने कुछ और सोच रखा है, अब राघवेंद्र हमारा पुराना दोस्त था, हम अपनी दोस्ती भुला तो नहीं सकते ना, डोंट वरी, हमने उनके लिए कुछ और भी बेहतर सोच रखा है, यशवर्धन ने रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया। देसाई जी को उसके कहने का मतलब नहीं समझ आया, यशवर्धन ने पलकें झपकाकर उसे सब ठीक होने का आश्वासन दिया। उसके बाद दोनों ने अपने अपने ग्लास उठाए और चीयर्स कहकर शैंपेन पीने लगे।